समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार वैष्णवी, वेरी हैप्पी टू बी विद यू एंड टू आवर लिसनर्स। नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी टुडे शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी। सो वी विल फर्स्ट बिगिन विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज per se, our headlines, then our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes. There is a lot that we will cover today and all of this over the next 30 minutes. We are first beginning with the news headlines, shall we, Vaishnavi?
Jai, bilkul. सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने को निर्देश दिया।
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal emphasizes Jan Vishwas Bill 2026 is designed to foster trust-based governance.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा के कालियाचक मामले के मुख्य षड्यंत्रकारी को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया।
Ministry of Education declares NCERT as an institution deemed to be university under distinct category.
पश्चिम एशिया संघर्ष में नागरिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी हमले शुरू, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर संकट गहराया।
एंड इन फुटबॉल, डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया टू फेस बांग्लादेश इन द फाइनल ऑफ द सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 इन मालदीव्स टुनाइट। सो लिसनर्स, दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। फर्स्ट let us talk about Good Friday. So Good Friday is being observed today. Christians across the world are observing the day with solemn prayers, marking the crucifixion of Jesus Christ. So according to the New Testament, Good Friday is the day on which Jesus Christ was crucified by order of the Roman governor, Pontius Pilate. And at that time, religious leaders brought him before the Roman authorities, accusing him of blasphemy for claiming to be the Son of God.
एक सार्वजनिक मुकदमे के बाद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की सजा दी गई थी, जो उस समय सबसे गंभीर अपराधों के लिए दी जाती थी। उन्हें सड़कों से होते हुए एक लकड़ी का क्रॉस उठाने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसी पर कीलों से जड़ दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ईसाई मान्यता के अनुसार ये मानवता के पापों के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। ईसाइयों के लिए गुड फ्राइडे शोक, आत्मचिंतन और पश्चाताप का दिन होता है।
Yes, exactly. And well, we told you that Jesus Christ was crucified by the order of the Roman governor, Pontius Pilate. And so this day reflects the profound depth of Jesus Christ's sacrifice and the hope of salvation. So many observe this day by fasting, praying and attending church services that commemorate Christ's final hours and death. Although this is a day of mourning, it marks a prelude to the celebrations of Easter Sunday, a day that commemorates Christ's resurrection and the promise of new life, serving as a fundamental cornerstone of the Christian faith. Our Thirumalanthapuram correspondent has filed a report on how Christians across Kerala are observing Good Friday.
From early morning, churches across Kerala witness special prayers, hymns and solemn services as devotees gathered in large numbers. The faithful took part in the way of the cross, reflecting the suffering and sacrifice of Christ through traditional observances passed down over generations. In Thiruvananthapuram, major churches such as St. Joseph Metropolitan Cathedral Palayam and St. Mary's Cathedral Pattam saw large congregations. Services were led by senior clergy, with special prayers and reflections marking the significance of Good Friday. The famous pilgrimage center of Malayattur Hills in Kerala is witnessing huge crowd of devotees for the last 3 days. Ezhagumayal Hills in Idukki district is also witnessing large crowd.
observe in a spirit of silence and penance. Many believers fasted and spent the day in prayer. The solemn rituals of Good Friday form a key part of the Holy Week leading up to Easter, symbolizing the journey from sacrifice to hope. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
So that tells you how Christians across Keralam are observing Good Friday. So let's move on. Now we will talk about, me and Vaishnavi, we will talk about digital transformation of India's weather forecasting system. So as we know, India is highly vulnerable to extreme weather events such as cyclones, even floods, heat waves and landslides as well due to its diverse geography, long coastline, and the other reason is monsoon-dependent climate. So according to the India Meteorological Department and the Ministry of Earth Sciences, India experiences hundreds of extreme weather events every year, hundreds, with floods affecting nearly 40 million hectares of land and heat waves. They are becoming more frequent in recent decades, as we can see. And over 75% Vaishnavi of India's districts are exposed to multiple climate hazards. While cyclones and floods alone, they account for the majority of disaster-related losses. So in this context, the in-house development of a multi-hazard early warning decision support system by India Meteorological Department. This is a timely and strategic step as accurate forecasting and integrated risk analysis significantly reduce disaster losses and public safety.
श्रोताओं, ये मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक आधुनिक डिजिटल पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है जिसे मौसम विभाग ने ओपन सोर्स तकनीक और अपनी विशेषज्ञता से विकसित किया है. मिशन मौसम के अंतर्गत शुरू की गई ये प्रणाली देश में रियल टाइम मौसम की निगरानी और चेतावनी देती है. इस प्रणाली का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था. ये जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस मैप जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है जिससे मौसम वैज्ञानिक सटीक जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं और लोगों तक आसान तरीके से पहुंचा पाते हैं.
Exactly, Vaishnavi, and the primary objective of the multi-hazard early warning decision support system, this is to build an integrated and indigenous forecasting system which is capable of delivering accurate, real-time and impact-based multi-hazard forecast across India. So the system is designed to empower forecasters, decision makers and communities as well by improving information flow and then thereby actually enabling timely early warnings. Through these capabilities, the system supports impact-based forecasting and risk-based warnings, allowing IMD forecasters to translate complex data into actionable information.
ये प्रणाली जो है ये मौसम का पूर्वानुमान लगाती है और साथ ही बड़े पैमाने पर डेटा भी संभालती है.
So this is actually approved by the Union Cabinet in September 2024. Mission Mausam, actually. So listeners, this is a flagship initiative aimed at strengthening weather forecasting and early warning capabilities across the country. The mission aims to enhance the accuracy as well as the resolution and then lead time of forecast for extreme weather events. They are like, which I told you in the beginning, cyclones, heavy rainfall and heat waves. So within this system, which is multi-hazard early warning decision support system, well, many events, as I'm telling you, this mission strengthens the scientific and technological backbone of forecasting and forecasting such events like cyclones, heavy rainfall, heat waves by improving observation networks. Second, data assimilation. Third, modeling capabilities. Fourth, enabling timely weather alerts for effective disaster preparedness. Also, the multi-hazard early warning decision support system represents a decisive transformation in India's approach to weather forecasting as well as disaster reduction. And this happens actually by integrating real-time observations, advanced modeling, GIS-based analysis and structure dissemination within a single digital framework. The system converts weather and climate information into timely preventive action. And this system, the multi-hazard early warning decision support system, this has strengthened preparedness across environment, energy, health, agriculture, livelihoods and governance. Overall, a great impact. And it has reduced thereby loss of life, limited economic damage, improved service delivery, as well as enhanced public trust through consistent as well as impact-focused warnings The system demonstrates how technology-driven early warning delivers measurable public value at the national scale, and thereby it positions India as a global leader in multi-hazard early warning systems.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
First, as part of this, there is an announcement for our listeners. As part of our series People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to Swami Brahmadevji Maharaj from Rajasthan. Swami Brahmadevji Maharaj will be honored with the prestigious Padma Shri in the field of social work. And to listen to this conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आज समापन होने जा रहा है। इन खेलों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इस प्रतियोगिता ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। और ब्यौरा के लिए चलते हमारे संवाददाता के पास।
छत्तीसगढ़ में हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अनेक विजेता खिलाड़ियों का सफर देश के दूसरे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है कि आर्थिक तंगी और विपरीत हालातों के बावजूद मेहनत करने से कामयाबी कदम चूम सकती है। झारखंड के वेटलिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम के पास जरूरी उपकरण और किट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस प्रतियोगिता में बाबूलाल ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। अरुणाचल प्रदेश की वेटलिफ्टर अनाई वांगसू यह प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ दिन पहले अस्पताल के बिस्तर पर थीं, लेकिन इस शारीरिक चुनौती के आगे हार मानने के बजाय अनाई ने वापसी की और उन्होंने इस प्रतियोगिता में महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। मिजोरम के युवा वेटलिफ्टर इसाक 16 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही अपने माता और पिता दोनों को ही खो दिया था। उनके कोच ने उन्हें सहारा दिया और इसाक ने कड़ा संघर्ष करते हुए 60 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी तरह झारखंड की पहलवान 19 वर्षीय पूनम औरन ने कंधे की चोट से पार पाते हुए इस प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नासिक के एथलीट सूरज माशी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ना तो उनके पास कोच की फीस देने के पैसे थे और ना ही जरूरी जूते खरीदने के। इस प्रतियोगिता में सूरज ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत लिया। जम्मू कश्मीर के हमाम हुसैन ने अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए घर घर जाकर दूध पहुंचाने का काम किया। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके और उनके बड़े भाई के कंधों पर आ गई। इन मुश्किलों के बीच भी उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। उनका संघर्ष रंग लाया और इस प्रतियोगिता में पुरुषों के 79 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
Now we'll head to Puducherry. So amid growing concerns over the menace of cash for votes and other inducements that undermine the sanctity of elections, efforts are being intensified to promote ethical voting practices. For the upcoming Legislative Assembly elections, the Office of Chief Electoral Officer Puducherry has launched an Honest Voter campaign, and this aims at promoting ethical voting and strengthening democratic values in the Union Territory. Let's find out more details from our correspondent.
As a part of the initiative, voters are encouraged to affix an Honest Voter sticker at the entrance of their homes and take a selfie to demonstrate their commitment to free and fair elections. Citizens are also being urged to involve their family members, friends and neighbors in the campaign, turning it into a community-driven movement. The campaign assumes significance in the backdrop of concerns over inducements such as cash for votes, which undermine the very spirit of democracy. Such practices not only distort the electoral process, but also weaken public trust in democratic institutions. By rejecting inducements, voters play a crucial role in ensuring that elections remain transparent and truly representative of the people's will. Speaking to Akashwani, election department officials said the initiative seeks to create awareness that every vote is valuable and must be exercised with integrity and responsibility. The campaign encourages citizens to take a public pledge against unethical practices and stand for clean elections. Participants can share their selfies on social media and tag the official handle @CEO Puducherry, helping to amplify the message and inspire others to join the effort. Through this initiative, the election machinery aims to foster a culture of informed and responsible voting, ensuring that democratic principles are upheld and strengthened across Puducherry. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
रामलीला भगवान राम के जीवन का उत्सव मनाने वाला एक जीवंत हिंदू त्योहार है। वैसे तो इसे पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ओडिशा के बौद्ध जिले में होने वाली रामलीला बेहद खास और अनोखी है। ये त्योहार स्थानीय लोगों की गहरी दोस्ती और एकता को दर्शाता है। जानते हैं हम संबलपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
The Ramlila of the Bodh district in Western Odisha is a unique celebration that stands apart from others. Spanning 18 days, the festival symbolizes the eternal struggle between good and evil, with Lord Rama victory over Ravan embodying the ultimate triumph of virtue. This tradition highlights the community's strong bond and communal harmony while showcasing the region's rich cultural heritage. The festival is a cultural spectacle that demonstrates the community devotion and unity. Centered around Ram Navami, this 18 days celebration brings together locals and pilgrim to witness specialized theatrical performances of the Ramayana. Each night, thousands of devotees gather at the Maruti Mandap of the Raghunath Temple in Bodh to enjoy these sacred acts performed by local artists. The festival's climax is the epic battle between Lord Rama and Ravan. The grandeur of the event is amplified by the Nagar Brahman of Ravan, a massive spectacle that draws crowd in the thousands. The final day features the highly anticipated Ram-Ravan war performed with intricately designed chariots, culminating in Lord Rama victory and the restoration of Dharma. For Parikrama, Alok Chandra Varik, Akashvani, Sambalpur.
So listeners, the Mizos in general have been quite aware of sanitation and cleanliness. In fact, it has been maintained that there has not been any incidence of manual scavenging in Mizoram. For many years, Mizo society has been known for its hygienic and healthful lifestyle. We have more from our correspondent. Let's find out the details.
In a major push towards making Aizawl the cleanest city in the country, a mass cleanliness drive was conducted across the capital Aizawl. Individual localities also do take part in these cleanliness and sanitation activities by cleaning their localities. With the combined efforts of the government, NGOs and general public, community garbage are collected and disposed of in designated location. The initiative organized by the Coordination Committee for Aizawl City Cleanliness was a joint venture of State Urban Development and Poverty Alleviation, Aizawl Smart City, Aizawl Municipal Corporation and Central Young Mizo Association, aiming at achieving a garbage-free Aizawl. UDNPS Secretary Lalman Somapasuo flagged off the drive during a brief ceremony held in front of Vanapa Hall and simultaneously launched the Aizawl City Branch YMA Cleanliness Competition. Speaking on the occasion, Pasuo emphasized that prioritizing cleanliness is an essential aspect of patriotism. He urged the Mizo people to take collective responsibility of caring and upkeeping their land. He also said that cleanliness is an economic asset that enhances the state's value and serves as primary attraction for tourists. The initiative saw widespread participation from various departments and YMA branches despite challenging weather conditions that hamper efforts in several localities. The organizers identified 15 high-priority black spots characterized by heavy waste accumulation, and local YMA branches neighboring these sites conducted community surveys to clean such spots. According to officials, a mass initiative is a key pillar of the comprehensive plan for municipal solid waste management in Aizawl, which aim at making Aizawl the cleanest city in the country and a garbage-free capital. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.
शगुन अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच मालदीव के माले में भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा।
And now in IPL cricket, Chennai Super Kings will take on Punjab Kings at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 7:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3rd April is the birth anniversary of freedom fighter and social activist Kamala Devi Chattopadhyay, who was born on April the 3rd, 1903 in Mangaluru. Common at the time, she was married at the tender age of 14 and was widowed only 2 years later. Kamla later became friends with Sarojini Naidu's younger sister, Suhasini Chattopadhyay, who introduced Kamla to their older brother, Harindranath. The two bonded over a love for the arts and theatre and married in the face of much societal opposition. Kamla's father-in-law was a progressive thinker and encouraged her to continue her education.
In 1927, Kamla joined the Indian National Congress and threw herself amidst the freedom struggle. She joined the Seva Dal and then became an outspoken supporter of the Salt Satyagraha. She was a part of the 7-member lead team announced by Mahatma Gandhi in the Salt Satyagraha of 1930 to prepare salt at the Bombay beachfront.
When World War II broke out, Kamla Devi was in England and she immediately began a world tour to represent India's situation to other countries and gather international support for independence after the war. During the partition of 1947, Kamla Devi worked tirelessly in helping the migrants to establish new homes. She also helped set up health facilities for the people affected due to the traumatic partition of 1947.
Kamla Devi worked relentlessly for the upliftment of women. She pioneered the cooperative movement, which helped raise the socio-economic status of women in the country.
Kamla Devi was an art enthusiast and worked to propagate art and culture of India. She focused on reviving the handicrafts and textiles of India. Chattopadhyay also set up the National School of Drama and later headed the Sangeet Natak Academy. Chattopadhyay also wrote about 20 books, many of which were inspired by her personal experiences during visits to foreign countries.
She was honored for her groundbreaking work with the Padma Bhushan in 1955 and with the Padma Vibhushan in 1987. In 1966, she was also awarded the Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. In 1974, she was awarded the titles of Ratna Sadasya by the Sangeet Natak Academy and Desi Kottamma by Shanti Niketan, the highest awards of both the organizations. On the 29th of October 1988, Kamla Devi Chattopadhyay breathed her last.
We also remember Bhuta Singh, Chuhur Singh and Imam Ali, who were sepoys in the Ludhiana Sikh Regiment of the British Indian Army. In 1857, they were posted in the Satluj Division. Influenced by the activities in Delhi and Meerut, these sepoys took active part in fighting against the British Army during the First War of Independence in 1857. However, they were captured by the British soldiers and charged with disloyalty and mutiny against the British rule. Bhuta Singh, Chuhur Singh and Imam Ali were tried and sentenced to death. They were hanged on the 3rd of April, 1858.
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जब सुरों की साधना और भावनाओं की गहराई की बात होती है तो एक नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, किशोरी आमोनकर। आज उनकी पुण्यतिथि है। जयपुर अत्रोली घराने की अग्रणी गायिका किशोरी आमोनकर ने अपनी अनूठी गायकी और गहरे भावों से शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी। वे मानती थी कि संगीत केवल तकनीक नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है और यही बात उनकी हर प्रस्तुति में साफ दिखाई देती थी। संगीत के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। आइए उनको याद करते हुए सुनते हैं किशोरी जी की एक खूबसूरत प्रस्तुति।
How beautiful. So Vaishnavi, let's remember another female vocalist here, another one of the most accomplished vocalists of the 20th century, Sarah Vaughan, expanding the technical and expressive possibilities of jazz singing. So yes, her voice was celebrated for its wide range, precise control and ability to reshape melodies as a horn player might. How great. And during the 1940s and 50s, she recorded extensively and popular songs. These include Tenderly, Misty as well. She received multiple Grammy Awards, including Best Jazz Vocal Performance, and then posthumously earned the Grammy Lifetime Achievement Award as well. Let's listen to her voice now.
Once in a lullaby, somewhere over the rainbow.
आज हम याद कर रहे हैं पत्रकारिता और धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान बनाने वाले राधेश्याम खेमका को. आज उनकी पुण्यतिथि है. राधेश्याम खेमका लंबे समय तक प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के संपादक रहे और उन्होंने अपने लेखन और संपादन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों को समाज तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था. भारतीय सेना के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ पद या उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और हाजिर जवाबी से भी हमेशा याद किए जाते हैं, और ऐसा ही एक नाम सैम मानेकशॉ का है. 1914 में आज ही के दिन जन्मे सैम मानेकशॉ, जिन्हें लोग प्यार से सैम बहादुर कहते थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल बने. वे अपने बेबाक अंदाज, तेज फैसलों और सैनिकों के प्रति गहरे लगाव के लिए जाने जाते थे. 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक विजय हासिल की थी.
Right, Vaishnavi, a soldier whose courage was unmatched and whose leadership reshaped India's military history. And yes, his legacy continues to inspire generations to lead with conviction and serve with honor.
जी बिल्कुल शगुन. और कहा जाता था कि एक सैम मानेकशॉ जो थे वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास और हास्य भावना से माहौल को हल्का कर देते थे.
How great.
हिंदी साहित्य में संवेदनाओं और मानवीय रिश्तों को नई गहराई देने वाले लेखक के रूप में निर्मल वर्मा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है. आज निर्मल वर्मा की जयंती है. निर्मल वर्मा की रचनाएं मनुष्य के भीतर की अकेलेपन, स्मृतियों और रिश्तों की जटिलताओं को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है. उनकी प्रसिद्ध कहानी परिंदे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में मानी जाती है, जिसमें वे लिखते हैं, मनुष्य अपने भीतर एक ऐसा संसार लिए चलता है जहां उसकी यादें और भावनाएं हमेशा जीवित रहती है. हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1999 में देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
सो टुडे इट्स ऑल्सो जया प्रदा'स बर्थडे. वेल, द लेजेंडरी एक्ट्रेस, शी हैज लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड देन वेंट ऑन टू एक्ट इन 8 लैंग्वेजेस. So beyond cinema, she carved a distinct path in television serials as well, creating a powerful presence on the small screen as well, Vaishnavi.
जी, और जया प्रदा ने 1980 और 1990 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई. अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें कई प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों और लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मानों से सम्मानित किया गया था. और आइए अब सुनाते हैं आपको जया प्रदा की फिल्म का एक खूबसूरत गीत.
यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरी लाल से तो सारा जग झिलमिलाए.
समाज और परिवार के रिश्तों को सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत करने वाली जानी मानी लेखिका मनु भंडारी का जन्म 1931 को आज ही के दिन हुआ था. मनु भंडारी हिंदी साहित्य की उन लेखिकाओं में शामिल थी जिन्होंने आम जीवन की सच्चाइयों को अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से बेहद सहज भाषा में प्रस्तुत किया था.
सो वेल, टुडे इट्स ऑल्सो हरिहरन्स बर्थडे. He sang over 15,000, well, even more than that, notable songs in Marathi and Bhojpuri, many other languages, Bengali, Sanskrit, Gujarati as well.
Ji, aur shrotaon baba ko sunate hain Hariharan ka ye prasiddh geet.
Bharat humko jaan se pyara hai, sabse nyara gulista hamara hai, sadiyon se Bharat bhoomi duniya ki shaan hai.
भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और शगुन को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।